नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी विशेष लाइव प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है बी द चेन सीरीज। पिछले 2 महीने से भी अधिक समय में हम इस लॉकडाउन और उसके बाद के अनलॉक के प्रोसेस में, इस चैलेंजिंग टाइम्स हैं, इनमें बहुत सारी नई चीजें सीखते आ रही हैं। कुछ चीजें हमने सीखी, कुछ चीजें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, और जहां पर हमें मुश्किलें महसूस हुई हैं, जहां पर हमें लगा है कि हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में अब समाधान के लिए, हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए, अपने स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से आपने राय मांगी है, और बहुत सारे दोस्त जो इन राय मशवरों से फायदा लेकर अपने लाइफ में बेनिफिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, तो आप सभी को ब्रह्मा कुमारी की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन प्रोटेक्शन का पर्व है, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर हम ऑलमाइटी को याद करते हैं, ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें, और अदरवाइज भी ये भाई बहन के पवित्र प्यार को भी दर्शाने वाला पर्व है। और ब्रह्मा कुमारी बहने अक्सर करके भारत के हर कोने में, हर शहर में, हर कस्बे में, जगह जगह जाकर लोगों को राखी बांधती हैं, परमात्मा के इस पवित्र रक्षा सूत्र में बांधती हैं, ताकि सभी के लाइफ प्रोटेक्टेड रहें। और आज इस वर्ष ये पर्व नए तरीके से मनाया जा रहा है, और घर पे रहकर भी हम एक दूसरे को सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में ब्रह्मा कुमारी के समुदाय की तरफ से और ब्रह्मा कुमारी के सभी भाई बहनों की तरफ से आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में लिखकर भेज सकते हैं, और जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे उनमें से सवालों को उठाकर मैं कुछ सवालों को दीदी जी से पूछूंगा, जो आज हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन है। अगर आप कमेंट नहीं देना चाहते, अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। यहीं पर वीडियोज में, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं, वहां पर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और उस शॉर्ट आउट को हम यहां पर दिखाएंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हमारे साथ हमारे एक नए मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं, जिन्होंने अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हमारे साथ आज ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरंजना दीदी जी हैं, जो बड़ौदा से हमारे साथ जुड़े हैं। ये नेशनल सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के, एंड एज ए मेडिकल प्रोफेशनल भी ये हमें आज एडवाइस दे सकते हैं स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन से रिलेटेड चीजों के ऊपर भी। तो दोस्तों, मैं आप सभी की तरफ से दीदी जी का स्वागत करता हूँ। दीदी जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दीदी जी, पहले तो आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और हमारे बहुत सारे दोस्त
आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की
जी। और ये बहुत खुशी की बात है कि रक्षाबंधन के दिन आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछना, अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सवाल से मेरे को याद आया कि आज हमारे पहले सवाल के पहले सवाल को लेकर आए हैं एकता जी। एकता इडानी इनका नाम है, इडानी इनका नाम है, और एकता जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। और एकता जी पूछते हैं कि हाउ टू काम एन एंग्शियस पर्सन इफ इट इफेक्ट्स द हेल्थ। वो कहते हैं कि अगर एक चिंतित व्यक्ति, एक एंग्शियस व्यक्ति है, उसे हम कैसे काम डाउन कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हमें पता है कि उसके एंग्जाइटी की वजह से उसके हेल्थ पे असर हो रहा है, तो ऐसे में हम एंग्शियस पर्सन को काम कैसे बना सकते हैं।
अभी आज का तो वैसे समय ही ऐसा है, कंपैरिजन और कंपटीशन का समय है, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहता है, न केवल आगे बढ़ना चाहता है परंतु बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है, और यही कारण होता है कि उनके अंदर एक डिप्रेशन का भाव हो जाता है, एंग्शियस बन जाते हैं, और उसका असर हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए हेल्थ पर पड़ता है कि भाई, क्योंकि हम जितना सोचते हैं ज्यादा, तो शुरू में तो वो सोचने तक रहता है, और उसके बाद जितना हम ज्यादा सोचते हैं उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी की सिस्टम्स पर होती है, तो सिस्टम भी फास्ट चलने लगती है। जैसे हम दौड़ते हैं, हम एक जगह खड़े हैं तो हमारी सिस्टम अलग प्रकार से चलती है, अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी सिस्टम अलग प्रकार से चलती है, फास्ट चलती है। जब हम सोचते ज्यादा है तो शरीर के ऊपर ऐसे इफेक्ट होती है एज इफ कि हम दौड़ रहे हैं, विचार दौड़ रहे हैं, परंतु ऐसा होता है, लगता है जैसे कि शरीर भी दौड़ रहा है। तो हमारी सारी सिस्टम भी फास्ट चलने लगती है, और फास्ट चलने लगती है तो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए आज के समय के अनुसार ये बहुत जरूरी है कि हम हर कार्य को शांति से करना सीखे, न केवल शांति से करना सीखे परंतु हर कार्य के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कार्य होता है, एक है कार्य और एक है उसका परिणाम, तो दोनों के बीच में अंतर हो सकता है। हर चीज एकदम फास्ट नहीं हो सकती है, तो इसीलिए एक धैर्य का गुण धारण करने की जरूरत है, और जिसको हम कहते हैं कि वेट एंड वॉच, ये भी हमें थोड़ा धारण करना पड़ेगा। तो हम आने वाली जो भी सिचुएशन है हमारे सामने, जो हमें फेस करनी है, उसको हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, समझा। और इसके लिए फिर क्या करना होगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रेनिंग कहां मिलती नहीं है, तो इसकी ट्रेनिंग यही है कि मन को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, शांति से सोचने की ट्रेनिंग, और वो मिलती है मेडिटेशन के थ्रू। कि जितना हम मेडिटेशन का सीखे, हम मेडिटेशन और अभ्यास करना सीखे, थोड़ा समय निकाले, क्योंकि आज के समय में ये भी एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। व्यक्ति के पास टाइम है तो भी एक कॉन्शियसनेस बनी हुई है कि टाइम नहीं है भाई, तो नहीं है, तो इसीलिए व्यक्ति उस अनुसार चलता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के समय के संबंध में हमें ये दो तीन बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो समय निकाल करके मन को शांत करने का अभ्यास, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो सीख करके हमें रोज उसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने की है नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। ये सोचना है कि मैं अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति हूं और मुझे मेरे अनुसार ही काम करना है। ये अगर सोचेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं।
जैसे आप ये बात बता रहे थे, उसी बीच में हमारे एक दोस्त ने एक और सवाल पूछा है, और वो स्ट्रेस से रिलेटेड चीज पूछ रहे थे। विजय नाम था इनका, और वो बोलते हैं जी, वो कहते हैं कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। बहुत बार हम जानते हैं कि स्ट्रेस हो गया है और हम देखते हैं कि हाँ, मैं आज स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, किसी कारणवश भी हो सकता है, शायद ज्यादा काम है, शायद किसी ने कुछ कह दिया, किसी भी कारण से मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, बट मैं उसको ओवरकम कैसे करूँ। विजय जी ये सवाल पूछते हैं, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं।
ठीक है विजय भाई, ये केवल आपका सवाल नहीं है, आज मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों का यही सवाल है। स्ट्रेस नहीं करना चाहिए वो तो सभी कहते हैं, पर कैसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मन का एक स्वभाव है कि मन अभ्यास के वश है। आप जो अभ्यास करते हैं, जो आप बार बार करते हैं, वो जैसे मन को आदत हो जाती है, तो मन को ज्यादा सोचने की भी आदत हो जाती है, और उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है। कई बार मन जो है वो किसी भी दो बातों में कंफ्यूज फील करता है, तनाव फील करता है, ये करूं या ना करूं, ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, इन बातों के संघर्ष में मन कभी कभी स्ट्रेस फील करता है। कहां पर पहुंचना है तो भी हम एक्चुअल सिचुएशन को समझते हुए भी उसे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कहां पहुंचना है, और आपको पता है कि ये टाइम ही लगेगा, जरूर लगेगा, तो भी हम उससे भी ज्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, अथवा मन में सोचते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को सही रूप से समझना बहुत जरूरी है, और फिर से मैं यही कहूंगी विजय भाई की धैर्य, धैर्य का गुण बहुत जरूरी है कि भाई समय पर हर बात हमें सही रूप से करनी ही है, पर उसके लिए हमें समय को भी देखना है, समय के अंतर को भी देखना है, स्वयं की कैपेसिटी को भी देखना है, सिचुएशन को भी देखना है, सामने आने वाला जो संघर्ष है उसको भी समझने की कोशिश करना है। वो सब बातों को अगर सोचेंगे तो आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और फिर से मैं यही कहूंगी कि आज के समय के अंदर मेडिटेशन का अभ्यास, जो मन को ऐसी ट्रेनिंग देता है कि जो शांति से धीरे से सोचना सिखाता है, तो मैं तो यही कहूंगी कि आज के समय में ये बहुत बहुत जरूरी है कि छोटा बच्चे से लेकर के युवा और सभी इस मेडिटेशन को सीखे, अभ्यास करे और आज के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करे। ठीक है भाई विजय भाई
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि स्ट्रेस होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने रियलाइज कर लिया कि हाँ स्ट्रेस होता है, बट उसके लिए सॉल्यूशंस भी आपको ढूंढने हैं और मेडिटेशन नो डाउट सर्टेनली हेल्प करता है। उससे अपने आप को तैयार करना है, पेशेंस रखना है, और अगर हम तैयारी करते हैं तो फिर हम बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हम मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारी है उसकी दवाई ये है, इतना जानना काफी नहीं, और दवाई लेनी भी पड़ती है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। एक और सवाल है, केवी राव हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम है, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। वो कहते हैं कि आई एम अ बीके फैमिली मेंबर, ये ब्रह्मा कुमारी के फैमिली मेंबर है, ऐसा कहते हैं। आई विल ऑलवेज फील हाउ अदर्स विल फील विद आवर आंसर्स when someone asks financial help which I am not in a position to do। वो कहते हैं कि अगर कोई मेरे से financial help पूछता है और मैं मदद करने के position में नहीं हूं तो तभी मुझे क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं ना बोलूंगा तो बुरा महसूस करेंगे, बट मुझे ये भी पता है कि मैं मदद नहीं भी कर पाऊंगा, तो ऐसे में मैं कैसे जवाब दूं उन्हें, ऐसा ही पूछते हैं राव जी।
अच्छा, ये सही बात है। कई बार ऐसी सिचुएशन को मैं फेस करना पड़ता है राव साहब कि क्या करे, कैसे जवाब दे। तो इसकी एक युक्ति ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं सैंडविच आंसर, कि भाई सैंडविच करना पड़ेगा, किसी को खराब भी ना लगे और आप सिचुएशन को उस तरीके से ले रहे हैं कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम आप कुछ दो अच्छे शब्दों से उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, अथवा इफ पॉसिबल है तो और कोई ऐसी युक्ति बता सकते हैं, और वो युक्ति बता करके अथवा कोई सिचुएशन को फेस कैसे करना है वो आप उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ उसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और इस तरीके से उसको कहना है, इस तरीके से बात करनी है कि उनको खराब फील नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि बात को हमें उस तरीके से लेना होगा और उनको अच्छे शब्दों से मदद करना होगा। ये भी अपना एग्जाम्पल बता सकते हैं कि मेरे पास भी ऐसी सिचुएशन आई थी और मैंने क्या किया, वो सब बातें बता करके उनको थोड़ा उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, फाइनेंशियल नहीं तो और कोई हेल्प उसको बता करके अथवा और कोई ऐसा रास्ता बता करके कि कहाँ से हेल्प मिल सकती है वो आप करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और स्वयं जो नहीं कर सकते हैं उसका जो आपको कॉन्शियस बाइट में भी कर सकती है उससे उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो चलो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम आप उनको थोड़ा सही रास्ता बताओ, उनका हौसला बढ़ाओ, थोड़ी अगर वो ज्ञान को समझ सकते हैं तो ज्ञान की बात बताओ, जो हम कहते हैं हमेशा कि ये दिन भी बीत जाएंगे होता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, परंतु धीरज से काम लेंगे तो ये सिचुएशन को भी पार कर सकते हैं, ऐसा उनको समझाओ और थोड़ा हौसला बढ़ाओ, तो मैं समझती हूँ कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ ना कुछ हेल्प तो की है।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि अगर आप सही में हेल्प नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में है, तो कम से कम हम कुछ अच्छा जरूर बोल सकते हैं, और ये सभी से पॉसिबल होता है। अक्सर मैंने ये चीज कहते हुए सुना है, लोग कहते हैं कि अगर तुम गुड़ नहीं दे सकते किसी को, तो कोई बात नहीं, गुड़ जैसे बोल तो दे सकते हो।
सही बात है
जी। दीदी, अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूँ। जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में लाइव, उन सभी दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को लाइव पूछ सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो आप इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में, जहां पर भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब या फेसबुक, जिधर भी आप देख रहे हो, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स टाइप इन कीजिए और कमेंट्स को यहां डाल दें। आपके प्रश्नों को हम कमेंट्स से लेकर यहां पर स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या ख्याल चल रहे हैं आपके अंदर, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे। जस्ट वांट टू गिव अस अ शाउट आउट, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बीच बीच में स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं socialmedia@pranavkumaris.com पर, वहां से भी हम प्रश्न लेंगे और आपके नाम को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपका नाम प्राइवेट रखा जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं दीदी। अगला सवाल हमारे एक दोस्त पूछते हैं, पूर्णिमा नाम है इनका, पूर्णिमा महापात्र, और ये फेसबुक से हमारे जी। पूर्णिमा जी पूछती हैं कि अंतर मन में काम है बट बाहर सिचुएशन हैवी है, हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ टू हैंडल दिस। वो बोलते हैं कि अंदर तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन काम सिचुएशन है, अंदर तो ऐसा महसूस कर रहे हैं, बट ये देख रहे हैं कि बाहर का सिचुएशन गड़बड़ वाला है और उसे मुझे ये हैंडल करना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होता है। अंदर तो मैं बहुत काम हूँ बट बाहर गड़बड़ है, बाहर का सिचुएशन को कैसे डील करें, थोड़ा मुश्किल जैसा लगता है, गड़बड़ वाला माहौल जब होता है, हैवी सिचुएशन होता है, तो उसे कैसे हैंडल करें, ऐसा पूर्णिमा जी पूछती है।
ये तो बहुत अच्छी बात है पूर्णिमा जी, कि आप तो पहले ये कह रहे हैं कि अंतर मन में हम काम हैं, तो पहले तो इसका अभिनंदन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंदर में अपने आप को ये फील करते हैं कि हम तो काम हैं, शांत है, अंदर में शांति है। तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अंदर में शांत में हैं, तो बाहरी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होंगी, आप उसको फेस अवश्य करेंगे ही। एक तो ये पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। अब सिचुएशन जब आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो सबसे पहली बात होती है एनालिसिस। आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे, और एक बात याद रखने की है हमें अपने जीवन के लिए, कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो ये एक बात को सोच करके आप किसी सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करेंगी, तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और आपने पहले जिन जिन सिचुएशन के ऊपर विजय पाई है, सक्सेस आप हुए हैं, उन बातों को याद करो कि पहले भी मैंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है, हम हमेशा सफल रही है, सक्सेसफुल रही है। इन बातों को अगर याद करेंगे और अंदर में आपको एक स्टेडीनेस है, एक कामनेस है, और इसलिए आप उन ताकत को अप्लाई करेंगे सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर आप उसको सही रूप से एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको फेस करेंगे, तो मैं समझती हूँ सिचुएशन को अच्छी तरह से आप फेस कर सकेंगे। और हमें विश्वास है कि आप पूर्णिमा जी जरूर सक्सेसफुल हो सकती है। जो अंदर से शांत है वो कैसी भी परिस्थिति को फेस कर सकता है।
बहुत ही अच्छी बात आपने दीदी कही कि अंदर से अगर आप शांत हैं, तो आप हर सिचुएशन को फेस कर पाएंगे, हर चीज को आप एड्रेस करने की क्षमता रखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं। दोस्तों, आपके प्रश्नों में से अगर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर सिमिलर टाइप के प्रश्न होते हैं, तो मैं दो तीन क्वेश्चंस को क्लब कर देता हूं और एक साथ मैं प्रश्न पूछता हूं। फेसबुक से हमारे साथ अमन जुड़े हैं और अमन पूछते हैं कि सिस्टर हाउ टू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉट थिंक ऑफ द वर्स्ट फॉर टुमारो और द फ्यूचर। वो कहते हैं कि हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने के लिए जीना कैसे सीखें, वर्तमान मोमेंट में हम जिए कैसे सीख सकते हैं, और ये सोचना छोड़ दें कि हम कल के बारे में जो बीत गया है या फिर फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में हम सोचना छोड़ दें कि वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा होगा जो हम सोचते रहते हैं, वो थिंकिंग कैसे हटा सकते हैं और इस मोमेंट में जीना कैसे सीख सकते हैं, अमन पूछते हैं।
ये ठीक बात है अमन जी, सीखना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में कैसे जिए, क्योंकि वर्तमान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। दो बातें हैं, जो बातें बीत चुकी है उसमें से लर्न करना है, जो बीत चुकी है उसमें जो हमें जरूरी है जो लर्न करना है, दोनों बातों से लर्न कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव हुआ है उसको भी याद करके उसकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव हो चुका है उससे भी लर्न कर सकते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरी बात रही आने वाले समय की, भविष्य की बात रही, फ्यूचर की बात रही, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये अपने आप में समझ लेने की बात है कि आने वाली कल आज के ऊपर ही निर्भर है। जैसी हमारी आज होंगी उसके आधार पर कल आने वाली है। अगर आज सही है, आज का समय, वर्तमान समय हम अगर सही रूप से उसका यूज करते हैं, वर्तमान समय में सही रूप से कर्म करते हैं, सोच समझ के कर्म करते हैं, और छोटी सी बात तो ये है कि हम ऐसा कर्म करते हैं, कर्म करते समय ये ध्यान रखें कि ऐसा कर्म करें जिससे स्वयं को सेटिस्फेक्शन मिले और दूसरों को कंफर्ट फील हो, सुख फील हो, ऐसा ही कर्म करे। ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे हमारी स्वयं की कॉन्शियस बाइट हो। इतना थोड़ा सा ध्यान रखे, अंदर बाहर अपने आप को एक जैसा रखने की कोशिश करे, तो मैं समझती हूँ भविष्य की कोई चिंता हमें सताएगी नहीं। भविष्य में क्या होगा ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज कॉन्शियसली अपने वर्तमान को सही रूप से अगर जी रहा हूँ तो आने वाली कल डेफिनेटली मेरी अच्छी ही होने वाली है। इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा अच्छा होता है। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो मैं समझती हूँ कि आने वाली कल की आप चिंता नहीं करेंगे। और ये एक स्पिरिचुअल सेइंग है कि हमेशा ये याद रखना है भाई कि जो हो चुका है वो भी अच्छा, हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। ये इस धरा पर एक ऐसा अविनाशी ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फॉर बेटरमेंट, तो सब अच्छा ही होने वाला है, डोंट वरी। पर उसके लिए वो फेथ क्रिएट करना पड़ेगा। मे बी कि आप जब सुबह में उठते हैं तो भी ये सोच चलाएं, सकारात्मक सोच कि आज मैं जो करूंगा वो अच्छे के लिए करूंगा, मेरे अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए। तो आने वाली मेरी जो कल है वो भी हमेशा अच्छी ही रहेगी। ये जितना जितना आप मन के अंदर चिंतन करते जाएंगे, मैं भी सोचते जाएंगे, तो हमारी सोच की भी इफेक्ट हमारे आने वाले समय पर पड़ती है। तो ये अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे भी, एक तो मन में दृढ़ता पूर्वक मानेंगे, बिलीव करेंगे कि मेरा आने वाला कल अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा। एज यू थिंक इट विल हैपन, तो वो आप सोचिए। और आज अपनी अपनी आज जो है वर्तमान जो है उसको सही रूप से उसका यूज करने का पूरा प्रयत्न करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ना आपको बीती हुई कल की चिंता होगी ना आने वाली कल की चिंता होगी। वर्तमान को सही रूप से उपयोग करें, अच्छा कर्म करें, ऐसा कर्म करें जो सबको सुख दे, तो हमें रिटर्न में अवश्य सुख मिलता है। तो मैं समझती हूँ ये ध्यान रखेंगे तो आप दोनों चिंताओं से मुक्त हो करके अपने वर्तमान में जीना सीख सकेंगे।
जी बहुत बहुत
ठीक है भाई साहब
जी। और इसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं और अमन जी का फीडबैक भी आया है, वो कहते हैं कि आप सही बोल रहे हैं दीदी, यू आर राइट, माय मॉम टेल्स मी द सेम थिंग। वो कहते हैं उनके मदर भी ये चीज उनके वो बार बार कहती रहती हैं। तो अमन जी उत्तर आपके पास है, आप उन चीजों को फॉलो करें और उसे एक्शन में लाने की कोशिश करें जो दीदी ने एडवाइस दी है, उस पर काम किया जा सकता है। अगर हम फॉलो करेंगे, उसको करना शुरू करेंगे, तो हम रिजल्ट्स देख सकते हैं। दीदी अगला प्रश्न विनोद श्रीवास्तव जी पूछते हैं। विनोद जी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, वो कहते हैं दीदी हाउ कैन आई ट्रेन माई माइंड टू गेट पीस हैप्पीनेस एंड लव। वो बोलते हैं कि मैं अपने मन को कैसे ट्रेन करूं कि मुझे शांति खुशी और प्रेम मिल सके। विनोद पूछते हैं।
अच्छा, उसके लिए एक बात मैं ये कहूंगी कि आप मन को जानो, है ना। मन को जानो अर्थात मन का ये स्वभाव है कि मन अभ्यास के वश है। आप जो विचार ज्यादा समय करते हैं, जो विचार करते हैं आप, और वही विचार आपकी मन की स्थिति बनता है। जो आप सोचते हैं, आपकी जो स्मृति होती है, वो आपकी स्थिति बनती है। आपने जो कहा कि पीस, शांति, हैप्पीनेस, लव, वो एक मन की स्थिति है, एक्सपीरियंस है। मन का एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और अनुभव का आधार है सोच। आप जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर एकदम नहीं, एक बार सोचने से वो अनुभव नहीं होता है, परंतु वही विचार सेम आप बार 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 सोचते हैं, मन को जब ये अभ्यास हो जाता है तो उसका अनुभव होने लगता है। जैसे आप अगर ये सोचते हैं कि मैं डिस्टर्ब हूं, कोई ने एक दो शब्द आपको बोल दिया, आपको खराब लग गया समझो, और वो जो खराब लगा वो आप बार बार अगर सोचेंगे तो आपकी मन की स्थिति भी खराब हो जाएगी। पर उसी प्रकार आप जो पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मेरा मूल स्वरूप ही शांत है, और एक्चुअली है, शांति के लिए हमें कहां बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा अपना स्वभाव है, निजी स्वभाव है। जैसे पानी है, ठंडा रहना उसका स्वभाव है, आप कितना भी गर्म करेंगे फिर छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रूम टेम्परेचर पर आ ही जाएगा। उसी प्रकार आपका स्वभाव शांत है, आपका स्वभाव सुख स्वरूप है, आप प्रेम स्वरूप है, परंतु आपको उसके बारे में सोचना होगा कि मैं शांत स्वरूप हूं, अशांति मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, और अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो शांति तो ऑटोमेटिकली है ही। तो इसीलिए इस बात के लिए आपको सोचना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इवन सुबह में उठ करके आप सारे दिन के लिए प्लान कर सकते हैं कि मेरा स्वभाव शांत है, मैं हर बात को, हर सिचुएशन को शांति से ही फेस करूंगा। किसी के साथ भी हम संबंध में, संपर्क में, व्यवहार में आते हैं तो हम शांति से ही व्यवहार करेंगे, प्यार से ही व्यवहार करेंगे। सोच और कुछ नहीं है, सोच केवल। आप अगर ऐसा सोचेंगे ना, एक दिन सोचेंगे, दो दिन सोचेंगे, अगर धीरे धीरे ऐसा सोचने का अभ्यास मन को हो जाता है तो आपको अपने आप वो शांति की महसूसता आएगी। आपको खुद को आश्चर्य लगेगा कि मेरे को ऐसा अच्छा कैसे फील हो रहा है, शांति कैसे फील हो रही है। कल मुझे जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आता था, आज मुझे कैसे प्यार से व्यवहार करने की इच्छा हो रही है, अपने आप लगेगा। तो जैसा सोचते हैं ना वैसी मन की स्थिति बनती है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा अभ्यास करना जरूरी है कि आप जब सुबह में उठते हैं तो उठते ही सारे दिन के हमारे व्यवहार के पर नजर करके हम ये बात को पहले देना सीखें, शांति देने की कोशिश करें, सुख देने की कोशिश करें, प्यार देने की कोशिश करें, रिटर्न में आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मिलेगा। आपको महसूस होगा कि मैं जैसे कि शांति से भरपूर हूँ, प्यार से भरपूर हूँ, सुख मेरा अपना निजी अधिकार है, ऐसा महसूस होगा। तो ये अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अनुभव करेंगे। अनुभव बताइए बाद में इस हमारी चैनल पर कि भाई कैसे अनुभव हुआ है ना। ऐसा सोचिए थोड़ा, जैसा सोचेंगे वैसा आपको अनुभव होगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी विनोद जी को। मैं समझता हूँ दूसरे दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि गुस्सा करना हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है, शांति मेरा नेचुरल स्वभाव है। अगर मैं गुस्सा करता भी हूँ तो थोड़ी देर के लिए करता हूँ, फिर वापस ऑटोमेटिकली शांत होना हर किसी को पसंद आता है। तो जो चीज आपके लिए नेचुरल है उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उस स्टेज पे रहने का, उसके लिए समय देने का अभ्यास करेंगे।
अभ्यास कर
जी। एक और प्रश्न है हमारे साथ, ऋतु भोसले हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतु जी फेसबुक से जुड़े हैं और वो पूछते हैं दीदी हाउ टू ट्रेन माइंड टू कीप फेथ एंड रिमूव फियर। ये मैं समझता हूँ ऋतु जी का प्रश्न सभी लोगों के लिए है, बहुत सारे मेजोरिटी लोगों के लिए है जो डर के वातावरण में भी जी रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जब डर का वातावरण है तो ऐसे में हम अपने मन को कैसे ट्रेन करें कि विश्वास बना रहे, हमारा फेथ बना रहे, वो पूछते हैं, और डर कैसे मिटाएं कहते हैं।
हाँ, ये सही बात है ऋतु जी, केवल आपका प्रश्न नहीं है, आज इन जनरल भूतों का ये प्रश्न है। फियर एक ऐसी महसूसता है जो अंदर की है और इसीलिए वो हमें एक उसको हटाने के लिए एक आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा, धीरज से शांति से पुरुषार्थ, किसी के कहने से नहीं। कोई कहे कि डर मत रखो तो उसे डर जाता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहने से क्या होगा। जैसे आजकल बहुत लोग कह रहे हैं, अभी कोरोना का कहर चल रहा है, सब बोल रहे हैं डरना मत। अरे भाई डरना मत कोई कहता है पर कैसे न डरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही बात है कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सबका अच्छा करने वाला एक परमात्मा होता है, भगवान है, ईश्वर है। तो अगर कोई मुझे मदद कर सकता है, कई सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर कोई मदद नहीं कर सकता है, मदद करने की कोशिश सभी करेंगे परंतु फिर भी फाइनल हेल्प तो एक ऑलमाइटी ही कर सकता है। तो हम उसके पर फेथ रखना सीखे कि वही हमारा सर्व संबंधी है। हमारा जैसे हम गाते हैं प्रार्थना में माता पिता भी है, पर मैं कहूं कि डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, सब कुछ वही है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। और सच में मानिए कि वो असंभव को संभव कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। तो अगर हम ये बात को मन में रखें, उनकी प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश करें, पहले तो समझने की कोशिश करें कि देखो आश्चर्यजनक बात है कि ये दुनिया भौतिक है, बहुत करके हमें इच्छा तो यही होती है कि हम इन आंखों के द्वारा जो देखते हैं उसको ही सत्य माने, वही लगता है, परंतु वो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है वो सत्य है, और जो दिखाई पड़ता है वो विनाशी है, अर्थात असत्य है, परिवर्तनशील है। तो इस बात को थोड़ा सोचे, सोचने की कोशिश करें, और फिर महसूस करें कि इस सारी दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है वो सूक्ष्म है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु वही शक्तिवान है, वही सर्वशक्तिमान है। उसके अंदर किसी भी सिचुएशन को परिवर्तन करने की शक्ति है, ताकत है, तो वो हमेशा मेरे साथ है। ये जैसे शरीर है और शरीर का पिता है, मात पिता है, कोई छोटा बच्चा होता है अपने फादर की अंगुली पकड़ के चलता है, तो मेले में भी जाएगा, मेले में बहुत लोग होते हैं, पर तो भी उसको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैंने तो मेरे फादर का हाथ पकड़ा हुआ है, वो मेरी संभाल करेगा। तो उसी प्रकार परमात्मा में फेथ रखने की बात है कि भाई वो मेरे साथ है, उसकी मुझे हमेशा मदद मिलने वाली है, तो मिलेगी, तो फिर कैसी भी सिचुएशन में डर नहीं रहेगा। यहां तक व्यक्ति फेथ रखता है, जो रखते हैं वो यहां तक फेथ रखते हैं कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो अगर ऐसा फेथ रखते हैं तो डर चला जाएगा, किसी बात से डरने की जरूरत, आखिर मैक्सिमम क्या हो सकता है, व्यक्ति को मैक्सिमम क्या हो सकता है? शरीर छूट सकता है, पर आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो मैं तो आत्मा हूं, अविनाशी हूं, वो तो कभी मरती नहीं है, तो किसी प्रकार के डर की तो बात ही नहीं है। तो मैं समझती हूं कि थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन अगर हम बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी में डर रहता ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं रहती है। तो और जितना इन बातों को केवल सुनने की बात नहीं है, पर उसको जितना चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जितना जितना चिंतन करते जाएंगे उतना उतना हमारा एक आंतरिक इनर फेथ बढ़ता जाएगा, और ऐसा पक्का फेथ हो जाएगा कि हमें किसी बात की, किसी व्यक्ति से, किसी बात से, किसी सिचुएशन से कभी भी डर लगेगा नहीं। तो मैं समझती हूँ कि हमें बातों को समझना होगा, आध्यात्मिक बातों को थोड़ा ज्यादा समझना होगा। आध्यात्मिकता ही इस सृष्टि को चला रही है, वही मुख्य है। जो दिखता है वो विनाशी है, जो नहीं दिखता है वो अविनाशी है, यही एक रहस्य है इस पूरे दुनिया में चलते हुए नाटक का। तो समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा
जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि आप हमें प्रैक्टिकली इन चीजों को यूज करने की जरूरत है, और हम बार बार अगर हमें डर लगता है तो ये चीज पूछ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा तो यही है, लोग यही कहते हैं कि डेथ का डर होता है, कि उससे तो डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि एज अ सोल आप एक इटर्नल एंटिटी है और आपकी बॉडी के लिए ये डेथ है, बट यू एज एन एंटिटी, एक स्पिरिचुअल बीइंग के हिसाब से आप हमेशा अमर हैं, इमॉर्टल हैं, इटर्नल हैं, ये कहा जाता है। जैसे आप ये बात कह ही रहे थे उसी दौरान शीतल जी ने हमको ये बात पूछी थी, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था। शीतल यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं कि ओवर थिंकिंग और डर निकालने के लिए क्या लाएं, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करें, और मेडिटेशन की आदत को पक्का कैसे करें, ऐसा पूछते हैं। मैं समझता हूँ दीदी आपने डर निकालने के बारे में ऑलरेडी हमें एड्रेस कर ही दिया है, ये जो प्रश्न पहले आप वाला आया था उसमें आप बता ही रहे थे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मेडिटेशन की आदत को पक्का कैसे करें, इसके बारे में आप शीतल जी को गाइड करें। शीतल,
ये तो बड़ी सरल बात है शीतल जी, आदत को कैसे पक्का करें, वो तो आदत को जितना बनाए रखेंगे उतना पक्का कर सकते हैं। क्या है कि हम जानते हैं मेडिटेशन को और मेडिटेशन में इंटरेस्ट भी रखते हैं, बहुत अच्छी चीज है। कभी एक आध बार आपने 5-10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास कर लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा कि बड़ी शांति लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु डेली रूटीन लाइफ के अंदर कई बातों का इम्पोर्टेंस हमें बहुत ज्यादा लगता है, कई बातों में हमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो व्यक्ति हमेशा जिन बातों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसमें ही समय देता है, जिस बात का इम्पोर्टेंस उसको बहुत ज्यादा लगता है उसमें ही समय देता है। तो मेडिटेशन को जानते हुए भी हमें जब तक उसमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है इंटरेस्ट, तब तक हमें उसमें समय हम देंगे नहीं। तो मैं समझती हूँ वो मेडिटेशन के आदत को पक्की करने के लिए एक बात तो अपने आप के साथ अनुशासन में रहने की जरूरत है। हम समय फिक्स कर ले कि ये समय मुझे मेडिटेशन के लिए बैठना ही है, तो समय नक्की कर ले तो मैं समझती हूँ कि आदत को आप पक्की कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगी, मन अभ्यास के वश है, मन बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है। आपने कोई समय नक्की कर लिया, समझो बाय चांस आपने सुबह में 6 बजे आप उठते हैं कि भी उठ के मुझे 15 मिनट मेडिटेशन करना है, थोड़े दिन भी आप करेंगे ना 8-10 दिन ध्यान करके, वो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर 8 दिन के बाद आपका मन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में चला जाएगा, वो मेडिटेशन करने लगेगा और आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो शुरू में थोड़ा ध्यान रख के एक आदत को पक्की करने के लिए समय नक्की करना पड़ेगा, और समय नक्की करके आप करेंगे तो आदत को आप पक्की कर सकते हैं। और जैसे कहा आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है, मैं फिर से आपको कहती हूँ कि मेडिटेशन ऐसी चीज है जो आप नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस एक इनर क्वालिटी है, आत्मा की एक आंतरिक शक्ति है जो मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और दूसरी एक बात कि आपने अगर कोई भी कार्य कॉन्फिडेंस से किया है और आपको सक्सेस मिली है, ऐसी बातों को याद रखो, मेमोराइज करो कि हाँ पहले भी मैंने सक्सेस पाई है तो अभी भी सक्सेस पाऊंगी। और ये अपने आप में सोचना है कि हम कार्य जो करेंगे वो पूरा कंसंट्रेशन से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, इंटरेस्ट से करेंगे तो हम अवश्य उसमें सक्सेस पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, जैसा सक्सेस चाहेंगे वैसा सक्सेस आपको मिल सकता है। संकल्प की बात है, विचार की बात है, मेडिटेशन के द्वारा संकल्प विचार शक्तिशाली बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, उसको ही कॉन्फिडेंस कहा जाता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने फीडबैक भी दे रहे हैं, जैसे जैसे आप बातें बता रहे हैं वैसे वैसे चीजें वो बता रहे हैं। अमन जी कहते हैं यू हैव सच ग्रेट विजडम एंड नॉलेज, थैंक यू अमन फीडबैक के लिए। और बहुत सारे दोस्तों ने भी फीडबैक्स लिखे हैं। आदित्य जी कहते हैं थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए एंड लॉट्स ऑफ लव कहते हैं। जयंत सिंह जी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप दीदी, ऐसा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के फीडबैक्स के लिए, आप चीजों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो चीज आप लिख भी रहे हैं। समतानी जी भी कहते हैं थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूं दीदी, शुभा चंद्रिका हमारे साथ है। शुभा जी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि हाउ टू प्ले अवर बेस्ट रोल इन एवरी रिलेशनशिप इन लाइफ। जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हम प्ले करते हैं अपने लाइफ में, उनमें से हम अपने रोल को बेस्ट तरीके से कैसे प्ले कर सकते हैं, ऐसे शुभा पूछती हैं।
अच्छा अच्छा शुभा जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति एक होता है पर उनको अनेक संबंधों के साथ अपना रोल प्ले करना होता है। तो मैं तो समझती हूँ सबसे पहली बात जो जरूरी है वो ये है, एक बात बेसिकली अपने नेचर के अंदर ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हर संबंध में ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हमारा जो व्यवहार है वो प्यार भरा हो, क्योंकि हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, एक्ट कम करते हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। तो क्या होता है व्यक्ति के आजकल व्यक्ति के स्वभाव में क्या हो गया है, सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। व्यक्ति बोल तो बहुत लेता है पर सुन नहीं सकता, दो शब्द भी सुन नहीं सकता है व्यक्ति। तो मैं समझती हूँ कि कई बार कितना पुराना संबंध होता है वो दो शब्दों में वो संबंध टूट जाता है, तो व्यक्ति के अंदर वो सहन करने की शक्ति नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो जरूरी है वो तो सबसे पहली बात तो यही कही कि भाई आजकल अंदर बाहर अलग नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक, जिसको ट्रूथफुलनेस कहते हैं। तो हम हर संबंध में भले किसी का स्वभाव क्या भी हो, किसी का व्यवहार क्या भी हो, क्योंकि ये दुनिया है और इस दुनिया को हम कहते हैं कलयुगी दुनिया है, किसी का भिन्न भिन्न स्वभाव हो सकता है, पर कम से कम हम अपनी तरफ से अगर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट है, संबंधों की बात है, व्यवहार की बात, कर्म की बात अलग है, पर इस संबंध में ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी की बात है, तो एक तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और तभी आप प्यार से किसी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो डिफरेंट संबंध होते हैं, हर एक संबंध के अंदर कई बातें जरूरी होती है, छोटी मोटी बातों में क्षमाशील होने की भी बहुत जरूरत होती है, जैसे कहा कि किसी का क्या स्वभाव, किसी का क्या व्यवहार, छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर हम अपने मन को खराब करेंगे तो संबंध भी खराब हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को माफ कर दें, भूल जाए, जिसको हम कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर ऐसा नेचर आप बनाएंगे तो सबके साथ मिलजुल करके आप चल सकते हैं। आजकल की दुनिया में ये बहुत जरूरी है, सहन शक्ति खुद की भी कम होती है, सबकी कम है, तो ऐसी ऐसी बातों को थोड़ा भूलने की आदत रखे, क्षमा करने की आदत रखे, प्यार से व्यवहार करने की आदत रखे, तो सब संबंधों को अच्छी तरह निभा सकते हैं।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, जब आप ये बात कह रहे थे मेरे को एक गाने की लाइन याद आई, मैं जिंदगी का साथ आता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये बहुत ही सुंदर से एक अप्रोच जो आपने कहा कि संबंधों को अच्छे से निभाना बहुत जरूरी है, जो चीजें गलत हो गई, जो चीज चली गई, उन चीजों को पकड़ के नहीं रखना है, उसे भूल जाना है, उसे लेट गो कर देना है, और जो चीज है उसे चेरिश करना है, संबंधों में जो चीज है उसे अप्रिशिएट करना, उसे चेरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई दीदी। अगला एक सवाल है, हमारे दोस्त पूछते हैं, नाम है इनका भावना खेमानी जी। भावना जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि माई फादर पास्ड अवे 10 मंथ्स बैक, बट टिल नाउ आई कैनॉट गेट ओवर द लॉस, व्हाट शुड आई डू दीदी, ऐसा वो पूछते हैं। भावना जी का प्रश्न है कि 10 महीने पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया है, मगर अभी भी वो उस लॉस को ओवरकम नहीं कर पाई हैं, उसे डील करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा भावना जी पूछते हैं।
भावना जी आपकी बात सही है कि जो एकदम नियर बाय है उनकी जब डेथ होती है तो व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात, अशांति की बात सबसे ज्यादा ये होती है, परंतु आप हम सब ये जानते हैं एक बहुत बड़ा सत्य है कि जो आया है उसको जाना तो है ही, कोई यहाँ पर हमेशा के लिए रहा हुआ नहीं होता है। तो एक तो ये सत्य को स्वीकार करने की बात है कि भाई कोई हमेशा तो नहीं रहेगा, हर व्यक्ति जो आता है उसको जाना तो होता ही है, तो ये बात अपने मन को बार बार समझाने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा सत्य हमें परमात्मा बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेज है, ये पृथ्वी बहुत बड़ा स्टेज है, इसमें एक अविनाशी नाटक चल रहा है और इसमें आप हम सभी एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये ड्रामा है, हर एक व्यक्ति एक्ट कर रहा है और जिसका जब भी ये एक्ट पूरा होता है तो वो एक्टर चला जाता है, स्टेज छोड़ के अपने घर चला जाता है। तो उसी प्रकार ये एक नाटक है और हर एक को अपना रोल पूरा करके फिर इस स्टेज से चले जाना होता है। तो उसी प्रकार मैं समझती हूँ हमें समझना है कि हर एक का अपना अपना रोल होता है। तो मैं कहूंगी भावना जी, जो आपके फादर है उसका अपना जो रोल है वो रोल पूरा हुआ, जिसको हम कहते हैं अंजल पानी कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं, कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो जब पूरा होता है तो आत्मा चली जाती है। और आत्मा क्योंकि अविनाशी है तो आत्मा का अपना दूसरा रोल शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जितना जितना इमोशनली हम वो आत्मा को याद करते हैं उतना वो आत्मा को भी वहां याद पहुंचती है और खिंचाव होता है। अच्छी बात ये होती है कि हम वो आत्मा को अपनी भावनाओं से फ्री कर दे, क्योंकि उनकी जो आगे की जर्नी है वो जर्नी तभी सुखमय हो सकती है कि जब वो स्वतंत्र हो। जब तक उसको कोई भी खींचता है तो वो उनकी जर्नी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्यार से हम भले याद करें परंतु दुख से नहीं, अशांति से नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना इस बहुत बड़े विशाल नाटक के अंदर पार्ट है। वो पार्ट उनका वो बजाते हैं और बजा के पूरा होता है तो चले जाते हैं, जैसे कोई भी नाटक होता है। नाटक में लोग पार्ट प्ले करते हैं तो जब तक ड्रामा चलता है तब तक पार्ट प्ले होता है। फादर है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब पार्ट चलता है। जब वो नाटक पूरा हुआ तो सभी संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये एक नाटक है, बहुत बड़ा बेहद का नाटक है। तो हमें ये समझना है और वो आत्मा को हमें एक अच्छे शांति के प्यार के वाइब्रेशन देने हैं, परंतु दुख के साथ याद नहीं करना है। तो परमात्मा को ये प्रार्थना करनी है अथवा याद करना है कि परमात्मा वो आत्मा को शांति दे, परमात्मा उसका आगे का जो रास्ता है वो सुखमय बनाए। ऐसी एक शुभ भावना के साथ हमें वो आत्मा को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है, दुख के वाइब्रेशन नहीं देना है। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप जरूर वो आत्मा का भी, उनको आत्मा रूप में देखना है, उस आत्मा का भी आप कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसा सोचने का है कि वो भी आत्मा है और आत्मा तो अमर है पर एक दूसरा शरीर धारण करके वो अपना दूसरा पार्ट प्ले करने गए हैं। तो आप केवल उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए कि वो आत्मा अपने पार्ट में सुख से रहे, शांति से रहे, अच्छा पार्ट प्ले कर सके।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि एक व्यक्ति जब यात्रा पे जाता है, जर्नी पे जाता है, उसकी जर्नी हमारे साथ थी और उस जर्नी पे वो आगे निकल गया है और उस टाइम पे अगर हम याद करते हैं, उनको पीछे खींचते हैं तो वो अपनी जर्नी ठीक से नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ एक बहुत ही पावरफुल अंडरस्टैंडिंग है ये, जब कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ कर आगे जा रहा है, उसका अलग रोल प्ले कर रहा है, तो हमें हेल्पफुल बनना चाहिए, हमें उनके लिए गुड विशेस देना चाहिए। उनकी अगली यात्रा के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। मैं समझता हूँ दोस्तों, ज्यादा प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे आगे, ये आखिरी प्रश्न मैं ले रहा हूँ। हालांकि दीदी इसमें ज्यादा समय नहीं है। अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। फोन है, नेगेटिव लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जो हमारे लाइफ में हैं। तो ये फोन, नेगेटिव पीपल और सोशल मीडिया, इन डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचें, पूछते हैं अभिषेक।
मैं समझती हूँ अभिषेक जी, हमारे हाथ में है, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि ये सब बातों में हमारा मन तभी जाता है कि हमें थोड़ा उन बातों में इंटरेस्ट होता है। हम न चाहते भी फोन खोल के बैठ जाते हैं, न चाहते भी वो जो भी मैसेजेस है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसकी इफेक्ट में आए बिना तो रह नहीं सकता है व्यक्ति। तो इसीलिए उसमें अपने आप को थोड़ा सा अनुशासन में रखने की बात है, अपने आप के साथ थोड़ा नक्की करने की बात है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे नहीं करना है। अच्छा लगता है और नहीं करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप तो खुद ही कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, तो मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है उसे बचना तो बहुत ईजी है, थोड़ा अनुशासन की बात है। और जो आपने कहा कि नेगेटिव पीपल जो है, सोशल मीडिया वगैरह है, नेगेटिव पीपल खास करके जो है, तो उसकी मुलाकात को एक तो अवॉइड करना सीखना है। अगर हम इतना शक्तिशाली नहीं है तो अवॉइड करना सीखना है। दूसरी बात, पहले से प्लान कीजिए कि वो नेगेटिव व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो आप कैसे उस समय पॉजिटिव बात करें। प्लान करना पड़ता है, वो नेगेटिव बात करते आपको पॉजिटिव करना है, और आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव बातें करना है कि सामने वाले को नेगेटिविटी को बताने का चांस ही ना मिले। क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है। और दूसरी बात कि वो नेगेटिव व्यक्ति को नेगेटिव रूप से देखना ही नहीं है, आप सोचना शुरू कीजिए कि उसके अंदर पॉजिटिविटी क्या है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर एक भी अच्छाई ना हो। बुराई बहुत हो सकती है पर एकादो अच्छाई तो हो ही सकती है। तो वो नेगेटिव व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव क्या है वो आप अगर सोच करके अपनी दृष्टि में वो पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, वो आपका हेल्पफुल बन जाएगा, नेगेटिव रहेगा ही नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ये कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ट्राई टू अवॉइड, वो भी अपने आप के अंदर एक कंट्रोल करने की बात है।
जी दीदी, हालांकि वक्त तो खत्म होता जा रहा है, बट मैं एक और प्रश्न को ऐड कर देना चाहता हूँ। ये आज के लिए आखिरी सवाल होगा। मौतुशी मलिक हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, और वो कहते हैं, दीदी आई एम नियरली 45 एंड बट माई फाइनेंशियल स्ट्रेस pains me, job lost due to COVID and everyone has a place to call a home of their own, but my mom sold our apartment long back. So Mautishi ji हमारे साथ जुड़े हैं और YouTube से वो कहते हैं कि वो 45 years के age के हैं और वो बहुत ज्यादा financial stress में हैं। अभी recently क्योंकि COVID की वजह से उनको नौकरी चली गई है उनकी, और वो कहते हैं कि सभी लोगों के पास अपना खुद का घर है बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हमारा खुद का अपार्टमेंट था वो भी मेरी मदर ने बहुत समय पहले ही बेच दिया था, तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें आप गाइड करें मौतिशी।
ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कई लोग फेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है जो चारों तरफ से चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि परमात्मा को याद करने की, अल्लाह को याद करने की जरूरत होती है और फेथ रखने की जरूरत होती है, थोड़ा वेट एंड वॉच। कभी कभी ऐसा होता है कि कि सिचुएशन ही बहुत ऐसी हो जाती है, क्या करे समझ नहीं आता है। तो थोड़ा भी कुछ करने को मिलता है, मेहनत करने को मिलता है, काम करने को मिलता है, वो थोड़े में भी शुरू करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, मुझे आपकी सिचुएशन पता नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा व्यक्ति करता है कि मुझे मेरे लायक जॉब होनी चाहिए, मेरे लायक काम मुझे मिलना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट का मिलना चाहिए, तभी हम काम करें। कभी कभी ऐसा होता है, पर जब सिचुएशन हमारे पास ऐसी बन जाती है, समय हमारा ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो उस समय हमें ये सब कुछ न देख करके जो मिला वो कर लेने का, जितना मिला उतना कर लेने का, वो एक स्वभाव बनाना चाहिए। मकान नहीं है, आपकी बात सही है, पर अगर अभी किराए पर रहते हैं तो भी खुशी से रहने की बात है। खुशी रखना हमारे हाथ में है। सिचुएशन कैसे भी है, जो है वो तो है, उसको एक दिन में तो आप उड़ा नहीं सकते हैं, उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, रोके करे या हंस के करे। परंतु मैं समझती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में भी थोड़ा खुश रहने की कोशिश करे, थोड़े में जितना है जो है ना, अच्छा हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे, जैसे कहते हैं ये दिन भी चले जाएंगे। जिसको दुख है तो भी यही कहा जाता है, दुख के दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, है ना। सुख में भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कहते हैं, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचने की जरूरत है अभी, और परमात्मा को याद करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय पर तो वो ही मदद कर सकता है। जब कोई नहीं मदद कर सकता है तो वो अवश्य मदद करता है, हाथ जरूर वो पकड़ेगा और दिन बदल जाएंगे। हम भी आशा करते हैं, शुभ भावना रखते हैं आपके लिए कि आपके भी दिन अवश्य बदल ही जाएंगे, अच्छे दिन आ ही जाएंगे। भाई साहब
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपसे ले लिया, एक आखिरी सवाल हम लेना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्वेश्चन को लेने के लिए। मैं समझता हूँ मोतीशु जी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, हमें हमेशा होपफुल बना रहना चाहिए, आपने ये बात कही। और जब आप बात कह रहे थे, मेरे को बात याद आई कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, तो ये फेथ हमेशा बना रहे कि अच्छी चीजें आएंगी, हमें ऑलवेज सारी साइड आप रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे जो हम नहीं ले पाए हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न इसलिए भी नहीं ले पाए क्योंकि समय की कमी होती है और नए दोस्तों को भी सवाल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हैं, कोशिश रहती है कि सारे क्वेश्चन को हम अलग फॉर्म्स में इंक्लूड करके ले सकें। सूजन जी ने सवाल पूछा था और खुशहाली जी, विश्वभूषण तराय, इन लोगों के प्रश्न मैं नहीं ले पाया हूँ, बहुत अभी प्रोग्राम के एंड में क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन को मैं कल लेने की कोशिश करूंगा कल के प्रोग्राम में, सेम टाइम बी द चेंज में शाम को 6-7 के बीच में। बट आज जिन लोगों ने, दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, एंथुजियास्टिक क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत पर्सनल सवाल भी पूछे हैं, एप्रिसिएशन दिए हैं, शाउट आउट दिए हैं, उन सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी दोस्तों की तरफ से आज हमारे जो मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं, जो आज हमारे सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम रहे, डॉक्टर निरंजना दीदी जी जो हमारे साथ बड़ौदा से लाइव जुड़े हैं, मैं दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।
हम भी सभी का बहुत बहुत, सबसे मिलने का आज अच्छा मौका मिला। आप सभी ने अपने अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, मैं समझती हूँ आपको कुछ ना कुछ तो जरूर उसका सॉल्यूशन मिला होगा, हेल्प मिली होंगी। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं समझती हूँ कि आप सभी रोज ये बात, ये चैनल से जुड़े हुए हैं, और आपको अपने व्यक्तिगत सवालों का जवाब जरूर मिलता होगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप फियरलेस बने और फेथ रखें, आने वाली कल बहुत अच्छी ही होंगी, ऐसा भगवान के पर, खुदा के ऊपर फेथ रख करके चलेंगे, और यही सोचे हम सभी, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ओम शांति।
बहुत ही अच्छी जी, बहुत ही अच्छी बात कही दीदी। कितने अच्छे विचार हैं कि हम सबका भला चाहें, सबका भला हो और सब सुख पाएं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं समझता हूँ ये सब हम कर सकते हैं। दीदी जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर दिन जो हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं उनके साथ हम आखिरी 3-4 मिनट मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं, और ये अच्छा लगता है लोगों को कि हम इतने लर्नर्ड मेडिटेशन के मास्टर्स के साथ मेडिटेट करें। तो नेक्स्ट 3-4 मिनट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मेडिटेशन में ले आए। दोस्तों आप बहुत सुंदर फीडबैक्स लिख रहे हैं, मैं सारा फीडबैक्स पढ़ने के लिए समय नहीं लेना चाहूंगा, वो फीडबैक्स आप स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे। और मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी अभी हमें मेडिटेशन के लिए गाइड करें। दीदी
ओम शांति। अभी आप सभी जहां भी बैठे हैं वहां थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे। अलर्ट कहते हैं उसको, बैक स्ट्रेट करके थोड़ा बैठेंगे, अपने ध्यान को चारों तरफ से हटा करके अपने आप में केंद्रित करने का पुरुषार्थ करें, कॉन्सेंट्रेट करने का पुरुषार्थ करें। सारे इस शरीर से भी अपने ध्यान को दो आंखों के मध्य भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करने का, कॉन्सेंट्रेट करने का पुरुषार्थ करें। सोचे मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, साधन है, माध्यम है इस दुनिया के साथ व्यवहार में आने के लिए। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ विनाशी शरीर है। इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वयं में मूल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। मैं स्वयं ही मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य सत्ता हूं। मुझ आत्मा में ही सोचने की शक्ति है। और सोच जैसी मेरी सोच है वैसे ही मेरी परिस्थिति बनती है। मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक सोच के साथ कि मैं स्वयं परमात्मा के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, जो भी परम शक्ति है उसके साथ अपना संबंध जोड़ करके उनसे एक अविनाशी जीवन जीने का सही रास्ता पा रहा हूं। अभी मैं स्वयं अपने जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों को धारण करते हुए सर्व संबंधों को निभाते हुए सबके साथ अच्छा प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए यही मन के अंदर दृढ़ता पूर्वक सोचने का पुरुषार्थ कर रहा हूं कि सबका भला हो, सबको अपने जीवन के अंदर सुख मिले, वर्तमान और आने वाला कल सबके लिए सुखमय हो, शांतिमय हो, ऐसी मैं शुभ भावना और शुभ कामना सबके लिए रख रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।